समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बुधवार के एक नए दिन की एक नई सुबह में एफएम गोल्ड चैनल पर यह है समाचार मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, जिसमें होते हैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं मेट्रो समाचार, मौसम का हाल, इतिहास के कुछ रोचक पन्ने और समाज के कुछ विशेष महानुभावों की पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन के बारे में जानकारी। तो स्वीकार कीजिए आप ही के अपने रवि कपूर और वेणु कटारिया, हम दोनों का नमस्कार।
Namaskar Ravi and a very warm welcome to all our listeners tuned into Akashvani FM Gold on 100.1 MHz and the entire Akashvani network. Dear listeners, today we will have in our Aaj Savere program, we will have the national and international news, Metro City updates, as well as some historical information related to this day, that is the 27th of March. But before that, Ravi has something to say about this day, that is the 27th of March in particular.
Bilkul sahi kaha aapne Renu, aaj 27 March hai, yani ki wo din jab Vishwa Rangmanch Divas manaya jata hai. विश्व रंगमंच दिवस की स्थापना 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट द्वारा की गई थी। रंगमंच से संबंधित अनेक संस्थाओं और समूहों द्वारा भी इस दिन को विशेष दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। इस दिवस का एक महत्वपूर्ण आयोजन अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संदेश है, जो विश्व के किसी जाने माने रंगकर्मी द्वारा रंगमंच तथा शांति की संस्कृति विषय पर उसके विचारों को व्यक्त करता है। 1962 में पहला अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संदेश फ्रांस की जीन कॉक्टे ने दिया था। वर्ष 2002 में यह संदेश भारत के प्रसिद्ध रंगकर्मी गिरीश कर्नाड द्वारा दिया गया था।
एंड वेरी ट्रूली हियर आई वुड लाइक टू पुट ऑन अ मैसेज एज सेड बाय ब्रेट बेलीज, हु इज द स्टेज डायरेक्टर फ्रॉम साउथ अफ्रीका ऑन वर्ल्ड थिएटर डे। ही सेड, We gather to weep and to remember, to laugh and to contemplate, to learn and to affirm and to imagine. How lovely his thoughts are about theatre. And Ravi, मुझे यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा और एक बहुत ही खूबसूरत डायलॉग याद आ रहा है राजेश खन्ना की मूवी आनंद से, जो कि बहुत एप्टली, यू नो, इट डिस्क्राइब्स अबाउट थिएटर एंड द एक्ट एंड लाइफ एज वी पोर्ट्रे। सो आई डोंट थिंक,
या सुन लेते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल।
जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है, जहां पर आप उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं, जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब, कौन, कैसे उठेगा, ये कोई नहीं बता सकता है।
बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि हम सब तो जीवन के इस रंगमंच की कठपुतलियां ही हैं और वो रोल निभा लेते हैं, कभी बचपन का, कभी जवानी का और कभी बुढ़ापे का। चलिए आइए शुरू कर लेते हैं सिलसिला मुख्य समाचारों का। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज आखिरी दिन है, जबकि बिहार में नामांकन पत्र कल तक दाखिल किए जा सकेंगे। पहले चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। तमिलनाडु की 39, राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, उत्तराखंड, असम और महाराष्ट्र की 5-5, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय की 2-2 सीटों तथा छत्तीसगढ़, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप तथा पुद्दुचेरी की 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को होगी और 30 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। बिहार में नामांकन पत्रों की जांच 30 मार्च को की जाएगी और 2 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। दूसरे चरण के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 89 लोकसभा सीटों के लिए अधिसूचना कल जारी की जाएगी।
The Election Commission has issued advisory to Chief Electoral Officers or CEOs of all the states and union territories in view of the heat wave. The advisory followed forecast of above normal temperatures by India Meteorological Department during forthcoming summer season, which may translate into stronger and longer spells of heat wave, especially during March to June this year. The Commission has shared a copy of do's and do nots issued by National Disaster Management Authority regarding minimization of heat wave impact. The NDMA has advised people to avoid going out in the sun, especially between 12 noon and 3 p.m. to minimize the impact during the heat wave. It has also advised to drink sufficient water and avoid stale food. The commission has asked CEOs to ensure minimum basic facilities, including drinking water and shade at the polling stations.
लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर बिहार में महागठबंधन में खींचतान की खबरों के बीच कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने कल नई दिल्ली में बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि वे इस बात पर सहमत हुए हैं कि वाम दल कांग्रेस और आरजेडी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने लोकसभा उम्मीदवारों की सातवीं सूची जारी कर दी है। पार्टी ने छत्तीसगढ़ की सरगुजा सीट से शशि सिंह, रायगढ़ सीट से डॉ मेनका देवी सिंह, बिलासपुर सीट से देवेंद्र सिंह यादव और कांकेर सीट से बीरेश ठाकुर को मैदान में उतारा है। आर सुधा तमिलनाडु के मैला धुतुराई से चुनाव लड़ेंगी।
Philippines President Ferdinand R. Marcos Jr. has expressed his gratitude to India for its swift and decisive action in rescuing Filipino crew members of a merchant ship attacked by Houthi rebels in the Gulf of Aden this month. The Indian Navy's medical team had rescued all the crew members of MV Confidence and provided them critical care after the merchant ship was hit by Houthi missile in Gulf of Aden on March 6th. Three crew members, including two Filipinos, were killed. All the Filipino crew members who survived the attack have been repatriated. Extending his gratitude to External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar, who is visiting the Philippines, Mr. Marcos said that he expresses his profound gratitude to the Indian government for their swift and decisive action in rescuing Filipino seafarers. Mr. Marcos said in a Facebook post that he looked forward to further strengthening their bilateral relations for the mutual benefit of both the nations.
सिनेवेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल CIFF का आज से चंडीगढ़ के सिनेपोलिस सिनेमा ऑडिटोरियम में आयोजन किया जा रहा है। फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन मशहूर अभिनेता बोमन ईरानी करेंगे। CIFF की उद्घाटन फिल्म जूलियट विनोचे अभिनीत कांस विजेता फ्रांसीसी फिल्म द टेस्ट ऑफ थिंग्स से होगी। निर्माता निर्देशक करण जौहर, अभिनेता ऋचा चड्ढा, अली फजल, रोशन मैथ्यू, गुलशन देवैया, वरुण ग्रोवर, रसिका दुग्गल, रश्मि कौर, शेखर कपूर, सुधीर मिश्रा और ताहिरा कश्यप खुराना महोत्सव के प्रमुख आकर्षण होंगे।
In the United States, Maryland State Police has said that the six people who were missing after the Francis Scott Key Bridge collapsed yesterday in Baltimore, Maryland, which have been presumed dead. The Francis Scott Key Bridge in Baltimore was rammed by a cargo ship and collapsed into the Patapsco River. Authorities said they are presumed dead due to the water temperature and time that has passed. The Singapore-flagged Dali cargo ship was setting off from the port of Baltimore to Colombo, Sri Lanka, when it apparently lost power and struck a pillar of the Francis Scott Key Bridge. All the 22 crew on the ship were Indian. India is a major player in the global seafaring industry. Emergency responders rescued two people from the water. Maryland Governor Wes Moore hailed the crew as heroes and said that their quick response saved lives because authorities were able to stop the flow of vehicle traffic onto the bridge in 2 minutes between the call and the collision. U.S. President Joe Biden has said he will seek funds from Congress to rebuild the bridge. The Indian parliamentary delegation led by Deputy Chairman of Rajya Sabha, Harivansh Narayan Singh, held a bilateral conference with their counterparts of Armenia on the sidelines of the Inter-Parliamentary Union, IPU, event in Switzerland. The Armenian delegation was represented by Vice President of the National Assembly, Hakob Arshkyan. While discussing about the bilateral relations between the two countries, Mr. Harivansh said there is an immense potential to explore various areas of engagement in parliamentary affairs. Referring to parliamentary cooperation between the two countries, Harivansh said that India and Armenia have common ideas of governance, which gives an opportunity to collaborate and share experience of the two countries. The deputy chairman also met the Inter-Parliamentary Union President, Tulia Akson. He congratulated her on assuming the charge of IPU president. And moving on to the world of sports, world number one pair of Rohan Bopanna and Matthew Ebden have advanced to the semifinals of men's doubles event at Miami Open Tennis last night. They defeated Sam Verbeek of Netherlands and John Patrick Smith of Australia 3-4, 7-5, 10-7 in the quarterfinals. The Indian-Australian pair showed great comeback after losing the first game.
और रेनू, अब टेनिस के बाद बात कर लेते हैं क्रिकेट की। तो आईपीएल क्रिकेट में मौजूदा चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटन्स को 63 रनों से हरा दिया है। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में 207 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटन्स की टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 143 रन पर ही बना सकी। इसके पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 206 रन बनाए। शिवम दुबे को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। तो ये थे अब तक के कुछ मुख्य समाचार। और अब चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के समाचारों की जानकारी दे रही हैं रेनू कटारिया।
थैंक यू रवि। आई विल बिगिन विद चेन्नई मेट्रो। The French aerospace and defense firm Starburst Accelerator SAAL is partnering with IIT Madras to set up an innovative hub for startups with a funding of 100 million euros. Through this collaboration, IIT Madras will enable the company to set up an accelerator program to boost the aviation, space and defense ecosystem in India. Starburst Accelerator is looking to create venture capital funds for ASD technology. The partnership will enable export promotion and provide support for Indian ASD startups to explore international markets through the extensive network of the French firm. The aim is to create innovative startups and help them grow rapidly to work in tandem with future aerospace and new space worldwide programs. Moving on to Bengaluru, in Karnataka, an amount of over rupees 56 lakh in cash, saris worth rupees 15.36 lakh, 11,781 litres of liquor worth rupees 38 lakh were among materials worth rupees 1.3 crore seized by the election officials in the last 24 hours. The total value of the cash and materials seized for the violation of the Model Code of Conduct has reached rupees 48.56 crore, which includes 118.4 kg drugs worth rupees 83 lakh and around 8 lakh litres of liquor worth around 24 crore rupees. As many as 760 FIRs have been booked, police have filed 4,924 complaints through Election Commission's C-Vigil app. While many of them were related to illegal posters and banners, 53 complaints included illegal distribution of money, 14 others for distributing gifts and coupons, and 12 for religious and communal speeches. And the last news that I have is from Hyderabad Metro. Elaborate security arrangements have been taken up by the police for the smooth organization of IPL T20 matches to be held today and for April 5th matches at the Rajiv Gandhi International Cricket Stadium in Uppal in Hyderabad. Ratchakonda Police Commissioner Tarun Joshi said around 2,800 policemen drawn from various wings of state police including TSSP Octopus Mounted Police would be deployed as part of the security arrangements. The security will be augmented with 360 surveillance cameras and anti-sabotage checks. A joint command and control room has been set up to monitor CCTV footage for taking immediate action. Anti-sabotage checks will be conducted uninterrupted till the completion of each match, said Tarun Joshi. And moving on to the other metros like Delhi, Mumbai and Kolkata, Ravi, can we share some more information on these?
Bilkul, Renu, bahut se samachar mere paas bhi hain. To shuruaat Delhi se hi karte hain. Aapkari Niti Ghotale mein Delhi ke Mukhyamantri Arvind Kejriwal ki giraftari ke baad unke istifay ki maang ko lekar kal Delhi Pradesh Bhajpa ne pradarshan kiya. दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आईटीओ से दिल्ली सचिवालय तक मार्च निकाला। इस अवसर पर बोलते हुए पार्टी के दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल में यदि नैतिकता है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा जेल से जारी किए जा रहे कथित आदेशों पर भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। श्री सचदेवा ने कहा कि ये अनैतिक है। इस प्रदर्शन में रामवीर सिंह वेधूड़ी, मनोज तिवारी, विजेंद्र गुप्ता, बांसुरी स्वराज के अलावा कई वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद थे। इस बीच आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी दिल्ली में श्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं ने तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि उनकी पार्टी गिरफ्तारी के विरोध में लगातार आवाज उठाती रहेगी। इस प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती, सौरभ भारद्वाज, आतिशी सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। दिल्ली विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र आज आयोजित किया जाएगा। विधानसभा का ये सत्र ऐसे समय में आयोजित किया जा रहा है जब मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी मामले में गिरफ्तार किया गया है। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक शोभन चौधरी ने कल अपने जोन के विभागाध्यक्षों और मंडल रेल प्रबंधकों के साथ कार्य प्रगति की समीक्षा की। नई दिल्ली में आयोजित बैठक में श्री चौधरी ने कहा कि संरक्षा सर्वोपरि है और इसके लिए रेल पथों, चल स्टॉक, सिग्नल एवं बिजली की ओवरहेड तारों के रख रखाव पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने विभागों से रेल कर्मचारियों के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण आयोजित करने को कहा ताकि रेल प्रणाली में मानवीय त्रुटियों को कम किया जा सके। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों और मंडल रेल प्रबंधकों को निर्देश दिया कि आगामी ग्रीष्मकाल के मद्देनजर सिग्नल प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। महाप्रबंधक ने रेल पटरियों में आने वाली दरारों पर विशेष ध्यान देने के अलावा सिग्नलों और रेल वेल्डों की व्यापक रूप से सतत निगरानी के भी निर्देश दिए। उन्होंने रेल पथों पर विद्युत संरक्षा के साथ साथ रेलगाड़ियों के निर्बाध परिचालन के लिए रेले और पैनल रूमों की संरक्षा पर भी ध्यान केंद्रित करने को कहा। दिल्ली पुलिस ने राजधानी के शाहदरा इलाके में फर्जी सिक्के बनाने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। कल दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस दौरान लगभग 2 लाख मूल्य के फर्जी सिक्के भी बरामद किए। इन गिरफ्तार आरोपियों द्वारा मंडोली इलाके में फर्जी सिक्के बनाने वाले एक फैक्ट्री चलाई जा रही थी। इस फैक्ट्री में 20 रूपये के नकली सिक्के बनाए जाते थे। आगे बढ़ते हैं विनु, चलते हैं महाराष्ट्र मुंबई की ओर। बृहन्मुंबई नगर निगम प्रशासन ने जानकारी दी है कि हालांकि जून और सितंबर 2023 के बीच कम वर्षा के कारण मुंबई को पानी की आपूर्ति करने वाले बांधों में जल भंडारण पिछले वर्ष की तुलना में अपेक्षाकृत कम है, लेकिन मुंबईकरों की जल आपूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नगर निकाय ने मंगलवार को एक अधिसूचना में बताया कि नगर निगम प्रशासन बांध में उपलब्ध जल भंडारण पर कड़ी नजर रख रहा है। राज्य सरकार पहले ही निभवानी जलाशय से नगर निगम को पानी की आपूर्ति करने पर सहमत हो चुकी है। बृहन्मुंबई नगर निगम के पास फिलहाल पानी की आपूर्ति कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कोलकाता की ओर। रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष श्रीमत स्वामी स्मरणानंद जी महाराज का कल कोलकाता के रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान अस्पताल में निधन हो गया। वे उम्र संबंधी बीमारियों से पीड़ित थे और हाल ही में उन्हें वेंटिलेशन पर रखा गया था। आज सुबह से शाम 8 बजे तक उनके पार्थिव शरीर को आम लोगों के अंतिम दर्शन के लिए बेलूर मठ में रखा जाएगा। उसके बाद बेलूर मठ में अंतिम संस्कार किया जाएगा। स्वामी स्मरणानंद जी महाराज रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के 16वें अध्यक्ष थे और उन्होंने 17 जुलाई 2017 को कार्यभार संभाला था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने श्रीमत स्वामी स्मरणानंद जी महाराज के निधन पर दुख और शोक व्यक्त किया है। तो ये थे अब तक के कुछ मेट्रो समाचार। आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे रवि और वेणु के साथ, और कार्यक्रम आज सवेरे में अब बात मौसम की। तो सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का मौसम। दिल्ली में दोपहर, शाम या रात में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मुंबई में धूप खिली रहेगी। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और कोलकाता की अगर बात करें तो कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। रेणु,
एंड चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई। द मिनिमम टेम्परेचर इज 26 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 34 डिग्रीज। Bengaluru is expected to have partly cloudy sky. The minimum temperature is 21 degrees Celsius and the maximum will be around 35 degrees. Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between a minimum of 25 degrees and a maximum of 39 degrees Celsius. रवि
और आइए अब पलट लेते हैं इतिहास के पन्नों को और जान लेते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या क्या हुआ.
जी बिगनिंग विद 1855 द ईयर ऑन दिस डे दैट इज द 27th ऑफ मार्च फिजिशियन एंड जियोलॉजिस्ट एब्राहम जेसनर पेटेंटेड केरोसिन. इन 1841 द फर्स्ट यूएस स्टीम फायर इंजन वॉज टेस्टेड इन न्यूयॉर्क सेंटर. And in 1912 on this day, the first Japanese cherry blossom trees were planted in Washington, D.C. Moving on to the year 1997, the government revoked the national emergency promulgated on December 3rd, 1971 on 27th of March. 1992, India signs the friendship treaty with Ukraine.
1982 में आज के दिन AFMA चौधरी बांग्लादेश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए. सन 2000 में आज के दिन रूस में 52.52% मत प्राप्त कर रूस के कार्यवाहक राष्ट्रपति व्लादिमीरोविच पुतिन ने राष्ट्रपति चुनाव जीता. सन 2003 में आज के दिन रूस ने घातक टोपोल RS-12M बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया. सन 2003 में आज के दिन मॉन्टे कार्लो में 12वीं अंबर शतरंज प्रतियोगिता के फाइनल राउंड में 1.5 अंक की जीत से विश्वनाथन आनंद ने तीसरा खिताब जीता. और सन 2008 में आज के दिन अंतरिक्ष यान एंजीवर पृथ्वी पर सफलतापूर्वक सुरक्षित लौट आया. और रेणु अब समय हो गया है कुछ प्रमुख व्यक्तियों की पुण्यतिथियों और जयंतियों के बारे में अपने श्रोताओं को जानकारी देने का.
बिल्कुल.
तो पुण्यतिथियों की सबसे पहले बात करेंगे रेणु. तो पुण्यतिथियों में आज सबसे पहले बात मुस्लिम शिक्षक विधिवेता और लेखक एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के संस्थापक सर सैयद अहमद खां की, जिनका जन्म तो हुआ था 17 अक्टूबर 1817 को, लेकिन उन्होंने इस दुनिया से रुखसत ली आज ही के दिन यानी 27 मार्च को, लेकिन 1898 में. सर सैयद अहमद खां ऐसे महान मुस्लिम समाज सुधारक और भविष्य दृष्टा थे जिन्होंने शिक्षा के लिए जीवन भर प्रयास किया. सर सैयद अहमद खां ने लोगों को पारंपरिक शिक्षा के स्थान पर आधुनिक ज्ञान हासिल करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि वे जानते थे कि आधुनिक शिक्षा के बिना प्रगति संभव नहीं है. सर सैयद अहमद खां मुसलमानों और हिन्दुओं के विरोधात्मक स्वर को चुपचाप सहन करते रहे. इसी सहनशीलता का परिणाम है कि आज सर सैयद अहमद खां को एक युग पुरुष के रूप में याद किया जाता है और हिंदू और मुसलमान दोनों ही समुदाय उनका आदर करते हैं. सर सैयद अहमद खां ने हमेशा ही ये बात अपने भाषणों में कही थी रेणु कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं.
जी बिल्कुल. एंड टुडे वी आर पेइंग ट्रिब्यूट्स टू यूरी एलेक्सेविच गागरिन हु पास्ड अवे ऑन दिस डे 1968, हु वाज अ सोवियत पायलट एंड कॉस्मोनॉट हु ब्रॉट द फर्स्ट सक्सेसफुल क्रूड स्पेस फ्लाइट, बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू जर्नी इन टू आउटर स्पेस. Travelling on Vostok 1, Gagarin completed one orbit off Earth on 12th April 1961, this flight taking 108 minutes. By achieving this major milestone for the Soviet Union amidst the space race, he became an international celebrity and was awarded many medals and titles, including the nation's highest distinction, Hero of the Soviet Union.
और अब जानकारी पंडित कांशीराम के बारे में, जो न सिर्फ गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे बल्कि उन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए थे. वैसे पंडित कांशीराम का जन्म 1883 ईस्वी में पंजाब के अम्बाला जिले में हुआ था. मैट्रिक पास करने के बाद उन्होंने तार भेजने प्राप्त करने का काम सीखा और कुछ दिन अम्बाला और दिल्ली में नौकरी भी की. इसके बाद वे अमेरिका चले गए. यहीं से उनका क्रांतिकारी जीवन आरंभ हुआ. आजीविका के लिए पंडित कांशीराम ने ठेकेदारी का काम किया. साथ ही वे इंडियन एसोसिएशन ऑफ अमेरिका और इंडियन इंडिपेंडेंट लीग में शामिल हो गए. उनके ऊपर लाला हरदयाल का बहुत ही प्रभाव पड़ा. वे संगठन भारत को अंग्रेजों की चुंगल से छुड़ाने के लिए बनाए गए थे. 1913 में पंडित कांशीराम गदर पार्टी के कोषाध्यक्ष बन गए और जिस समय यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध के बादल मंडरा रहे थे, गदर पार्टी ने निश्चय किया कि कुछ लोगों को अमेरिका से भारत वापस जाना चाहिए ताकि वे वहां जाकर भारतीय सेना में अंग्रेजों के विरूद्व भावनाएं भड़का सकें. इसी योजना के अंतर्गत पंडित कांशीराम भी भारत आए. उन्होंने सेना की कई छावनियों की यात्रा की और सैनिकों को अंग्रेजों की सत्ता उखाड़ फेंकने के लिए प्रेरित किया. काशीराम और उनके साथियों ने अपने कार्य के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से मोगा का सरकारी कोषागार लूटने का असफल प्रयत्न भी किया। इसी सिलसिले में एक सब इंस्पेक्टर और एक जिलेदार इनकी गोलियों से मारे गए और काशीराम और उनके साथी पकड़े गए। मुकदमा चला और 27 मार्च 1915 को काशीराम को फांसी दे दी गई।
And coming on to birthdays, today is the birthday of Konidala Ramcharan, who is an Indian actor, producer and entrepreneur who primarily works in Telugu cinema. He is one of the highest paid actors in Indian cinema and is featured in Forbes India Celebrity 100 list since 2013. Charan is the recipient of several awards, including 3 Filmfare Awards and 2 Nandi Awards. Here we are talking about his latest movie, RRR, which dominated the global award season last year. Ravi, it also won the Best Foreign Language Film and Best Original Song for Natu Natu at the Critics' Choice Awards. So why don't we listen into this song first and talk about Ram Charan later on.
Bilkul. और अब जिक्र कर लेते हैं भारतीय हिंदी सिनेमा की लीग से हटकर अभिनय करने वाली अभिनेत्री प्रिया राजवंश के बारे में, जिनका जन्म 1937 में शिमला हिमाचल प्रदेश में हुआ और निधन आज के दिन 27 मार्च 2000 मुंबई महाराष्ट्र में। इनका पूरा नाम वीरा सुंदर सिंह था। प्रिया की शुरुआती पढ़ाई शिमला में ही हुई। उन्हें बचपन से ही कला में रूचि थी और यही वजह थी कि उन्होंने पढ़ाई के दौरान कई नाटकों में हिस्सा लिया। इनके पिता सुंदर सिंह वन विभाग में संरक्षक थे। पिता को संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से ब्रिटेन भेजा गया। उनके साथ प्रिया भी लंदन पहुंच गईं। प्रिया ने वहां पहुंचते ही फेमस इंस्टीट्यूट रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में एडमिशन लिया। और प्रिया राजवंश के बारे में अभी बातें और भी हैं, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं उन्हीं पर फिल्माया गया ये गीत।
मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आप चुराए, हमें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें तो दिल का राज बताए, तुम्हें तेरा छुपाए, हमें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है।
प्रिया राजवंश ने सिर्फ चेतन आनंद की बनाई फिल्मों में ही अभिनय किया था। प्रिया राजवंश जब नाटकों में काम करती थी तभी एक फोटोग्राफर ने उनकी फोटोज खींची। चेतन आनंद ने अपने एक दोस्त के घर ये तस्वीर देखी तो वे प्रिया राजवंश की खूबसूरती के कायल हो गए। उन दिनों चेतन आनंद को अपनी नई फिल्म के लिए नए चेहरे की तलाश थी। 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने देश पर हमला कर दिया था। हिन्दुस्तानी फौज को भारी नुकसान हुआ और फौज को पीछे हटना पड़ा। इसी थीम पर चेतन आनंद हकीकत नाम से फिल्म बनाना चाहते थे। उन्होंने प्रिया राजवंश से संपर्क किया, उन्हें एक फिल्म की नायिका के लिए चुन लिया गया। लेकिन फिलहाल सुनते हैं फिल्म हिंदुस्तान की कसम से प्रिया राजवंश पर फिल्माया गया ये गीत। वैसे प्रिया राजवंश की जिंदगी में अकेलापन और परेशानियां उस वक्त आई जब 6 फरवरी 1997 को चेतन आनंद का देहांत हो गया और प्रिया राजवंश अकेली रह गई। खैर, उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्में हैं 1964 की हकीकत, 1970 की हीरांझा, 1973 की हस्ते जख्म और हिंदुस्तान की कसम, 1977 की साहेब बहादुर, 1981 की कुदरत और 1986 की हाथों की लकीर। तो आइए फिर सुन लेते हैं प्रिया राजवंश पर फिल्माया गया फिल्म हस्ते जख्म का ये गीत। चलते चलते आज का विचार कि बचपन में दोस्तों के पास घड़ी नहीं थी लेकिन वक्त सबके पास था, लेकिन आज घड़ी सबके पास है लेकिन वक्त किसी के भी पास नहीं। इसी विचार के साथ इजाजत दीजिए रवि कपूर और रेणु कुटारिया को आज सवेरे कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की।
एंड स्टे ट्यून फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात और हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोइंग बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर डे।
नमस्कार।